ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे शैवम.आर की श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बच्चों की कहानी का समय है। इसमें आप तिरुविळयाडल पुराण की 11वां भाग को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को पेश करते हैं श्रीमती शांता सुंदरराजन जी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।
11th एपिसोड। बच्चों, अनंत गुण पांडियन जो कुलोत्तुंगन का पुत्र था, राज्यभार संभालने लगा। भगवान शिव जी पर बड़ी आस्था रखता था। उस समय जैन और बौद्ध धर्म दक्षिण भारत में दूर दूर तक फैल चुके थे। यहाँ तक कि चोल राजाओं ने स्वयं को इन पाषाण धर्मों के अनुयायी घोषित कर दिए थे। अब तक पांड्य वंश इस घेर में नहीं आया था, इसलिए चोल राजाओं ने पांड्य देश पर हमला करके पांड्य देश में भी जैन धर्म को फैलाना चाहा। अनंत गुण पांडियन बहुत दुखित हो गया। उसने क्षात्र धर्म का अनुसरण करते हुए कई बार चोल राजा को हराया,
परंतु चोल राजा जैन मुनियों की कुबुद्धि के अनुसार मांत्रिक शक्तियों का उपयोग करने लगा। पांड्य राजा इन्हें सामना नहीं कर पाया और उसने शिव जी से बहुत प्रार्थना की। शिव जी तो पांड्य वंश के रक्षक थे। वे तीन बार अलग अलग वेश में प्रकट होकर चोल राजा के मंत्र शास्त्रों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार शिव जी ने पांड्य देश की रक्षा की। एक बार तो अपने वाहन दंडी को ही बेच दिया, जो विशाल पर्वत की भांति खड़ा हो गया। वह पहाड़ वृषभाद्री नाम से आज भी जाना जाता है।
अनंत गुण पांडियन का पुत्र गुणभूषण पांडियन अब सिंहासन पर बैठा। उसका मंत्री बड़ा चतुर था। वह आजानुबाहु और बड़ा वीर भी था, इसलिए वही सेनापति भी था। वह राजा का अत्यंत मित्र भी था। उसका नाम था सोम सुंदर। दोनों बड़े शिव भक्त थे। राज्य अच्छा चल रहा था। फिर भी एक शिकारी जो वनचरों का राजा था, वह पांड्य सेनाओं को उपद्रव देने लगा।
राजा ने अपनी सेना की स्थिति की समीक्षा ली और सोम सुंदर से कहा, हमारे पास सेनाओं की कमी है। रथ गज तुरक फसादियों का विस्तार होना आवश्यक है।
तुम राज्य कोष से जितनी निधि चाहे निकाल लो और सैनिकों को प्रशिक्षण दो। अधिक मात्रा में घोड़ों का भी प्रबंध करो।
मंत्री ने कहा, राजन, हम तो राजकोष की निधि से मंदिर, तालाबों, पाठशालाओं और यात्री गृहों का निर्माण करने वाले थे। आज अचानक ये कैसा निर्णय कर रहे हैं?
राजा ने कह दिया, जैसे मैंने कहा वैसे ही करना।
सोम सुंदर बहुत सोचने लगा। उसे यह स्वीकृत नहीं था कि भगवान के लिए रखे पैसों को किसी और काम में लगाएं। राजा से कहे बिना उसने राजकोष की सब निधि को सत्कार्यों में व्यय कर दिया।
खजाना जब रिक्त यानी खाली हो गया, तब वह डर गया। राजा ने जब सेना के बारे में पूछा तो कह दिया कि परदेश में सेना की प्रशिक्षण हो रही है। झूठ तो बोल ही दिया, लेकिन अब वह तर तर कांपने लगा। शिवजी के मंदिर में जाकर क्षमा मांगी। यह भी कहने लगा, हे भगवान, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। सत्कार्यों में निजी स्वार्थ नहीं है। हम दोनों ने मन ही मन जो वचन लिए थे, उसे ही मैंने पूरा किया है। अब आपको ही मुझे बचाना होगा, नहीं तो हमारे बीच की मैत्री सदा के लिए मिट जाएगी और मुझे भी राजा को धोखा देने के अपराध में यह राज्य छोड़ना होगा।
मंदिर से अशरीरी वाणी सुनाई दी, कल राजा के साथ महल के सामने मैदान में आ जाना।
अगले दिन राजा और मंत्री उपस्थित हुए। राजा बड़े उत्साह से सेना की प्रतीक्षा करने लगा। मंत्री तो शिवजी का नाम जप करने के अलावा कुछ भी न कर पाया।
सामने से एक विशाल सेना आई। ऐसा लग रहा था मानो रथ गज तुरक पद के सब मुंदर ही प्रकट हुआ हो। एक सुंदर जवान योद्धा उस सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसने कहा, यह रही आपकी सेना, अरे हाँ, आते समय मैंने एक वनचर राजा को देखा जिसे एक बाघ मार रहा था।
यह कहकर योद्धा तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। सोम सुंदर याने मंत्री को बहुत आनंद हुआ और उसे यह निश्चय हो गया कि वह जवान योद्धा साक्षात शिव जी ही थे। उसने गुणभूषण पांडियन को सच बता दिया और उसने अपनी गलती स्वीकार की। राजा को संतोष हुआ कि शिव जी ने उसकी भी गलती क्षमा कर दी।
इसी तरह भगवान शिव जी ने पांडी देश और शिव भक्त पांडी राजा की सर्वदा रक्षा करते थे। कभी वेदों और यज्ञ आदि सत्कारियों के लिए निधि के अक्षय पात्र को राजा के हाथ सौंपते तो कभी विषाग्रस्त कृतिका नक्षत्र देवियों जो मदुरई में पत्थर बनकर पड़ी रहती थी उनको अष्ट महासिद्धियों का उपदेश दिए।
शिव भगवान तो परदेशी राजाओं को भी अपनी कृपा दिखाते थे। एक बार चोल देश के एक राजा को जैन धर्मियों से बहुत संकट का सामना करना पड़ा तो वह मदुरई आ पहुंचा। वैगई नदी में बाढ़ आ गई थी। शिवजी ने नदी की बाढ़ को कम करके राजा को मंदिर के पीछे के द्वार से राह दिखाया। तब राजेंद्र पांडियन का राज्य चल रहा था। उसने चोल राजा की शिव भक्ति देखकर उससे मैत्री की हाथ बढ़ाई।
उसी चोल राजा की एक पुत्री थी जिससे राजेंद्र पांडियन ने विवाह करना चाहा, लेकिन पांडियन का भाई जो सदाचारी नहीं था वह भी चोल राजकुमारी से शादी करना चाहता था। उसने चोल देश जाकर चुपके से शादी करने का षड्यंत्र रचा। चोल राजा को पांड्य राज्य पर विजय पाने का प्रलोभन दिखाया।
चोल राजा ने भी मान लिया और अपनी पुत्री को राजेंद्र पांडियन के भाई से विवाह कराया। राजेंद्र पांडियन को बहुत दुख हुआ कि अपने ही भाई ने उसे धोखा दिया और मनपसंद राजकुमारी को खो बैठा।
इतने में चोल राजा ने पांड्य देश पर आक्रमण कर दिया। राजेंद्र पांडियन अपने देश को बचाने के लिए बड़ी सेना लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा, लेकिन चोल राजा और उनके मित्र देशों की सेना के सामने उसकी सेना छोटी थी। राजा सोच में पड़ गया। भगवान शिव जी से प्रार्थना की।
शिव जी की अपार कृपा से युद्ध भूमि में अचानक हलचल मच गई। थोड़े ही समय में पांड्यों की सेना के वीरों में बढ़ोतरी होने लगी। शिवजी साधारण वीर के वेश धारण कर सब वीरों को पानी पिलाने लगे।
वीरों में उत्साह और जोश पैदा हुई और जिससे भयभीत होकर चोल देश के राजा युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग गया। पांड्यन के भाई तो युद्ध भूमि तक पहुंचा ही नहीं। शिवजी की असीम कृपा से राजेंद्र पांडियन की आंखें भर आई। मंदिर जाकर बहुत धन्यवाद किया।
भगवान भक्तों में स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं देखते और यह भी नहीं देखते कि वह राजा है या रंक। जो भी सच्ची श्रद्धा से भक्ति करता है वह भगवान की प्रीति का पात्र बन जाता है। इसे साबित करने के लिए शिव जी ने और एक लीला रचाई।
मदुरे के पास एक छोटा सा गांव में एक गरीब महिला रहती थी। शिव जी की भक्त होने के नाते कुछ ना कुछ भगवान की सेवा करना चाहती थी। भगवान की एक सोने की प्रतिमा करना उसका असामान्य सपना था।
असामान्य इसलिए कि राजा के सिवा कितने भी धनवान क्यों ना हो कोई भी कंचन प्रतिमा बना नहीं सकता था। उसके लिए बहुत सोने की आवश्यकता थी। दिन रात शिवजी याचना करती थी।
भगवान ने उसकी याचिका सुन ली। असामान्य काम को सामान्य करने का संकल्प किया। केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। वे एक सिद्ध पुरुष के रूप में उनके घर पधारे। महिला ने उनकी विधि पूर्वक अतिथि सत्कार की। वे बहुत प्रसन्न हुए और कोई भी वर मांगने को कहा। महिला ने अपने मन की बात कही।
सिद्ध पुरुष जो स्वयं भगवान ही थे महिला से कहा, घर में पड़े सब बर्तनों को ले आओ। महिला भी ऐसे ही किया। सिद्ध पुरुष उन तांबे और पीतल के बर्तनों पर विभूति लगाई। तक्षण सब बर्तन सोने के हो गए और चमकने लगे।
उन्होंने कहा, तुम अब इसको शिव जी की प्रतिमा बनाने के लिए उपयोग कर सकते हो। कहकर वे अपने आसन से खड़े हो गए। महिला जब दंडवत करके उठी तो वह पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। उसको इतना आनंद हुआ कि वह इस घटना पर विश्वास ही नहीं कर पाई। कहा जाता है कि वह प्रतिमा अब भी मंदिर में है।
बच्चों, अगली कड़ी में मिलेंगे।